नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। नमस्कार नीरव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका और अभिवादन श्रोताओं का।
आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा, हरमनप्रीत सिंह कप्तान और हार्दिक सिंह उप कप्तान। टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से, दूसरे में भारत और इंग्लैंड आमने सामने। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 44 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 24वें स्थान पर। और यूरो फुटबॉल कप में डेनमार्क और ऑस्ट्रिया की टीम अंतिम 16 में पहुंची। बात हॉकी के मैदान से, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की आज घोषणा कर दी गई। 16 सदस्यीय टीम में हरमनप्रीत सिंह कप्तान और हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। पिछले ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके गोलकीपर पिया श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ी भी टीम में हैं। टीम में 5 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में खेलेंगे। इनमें जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह शामिल हैं। गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। और आपको टीम बता दें इस प्रकार है, गोलकीपर श्रीजेश परट्टू रविन्द्रन, डिफेंडर जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह, सुमित संजय। मिडफील्डर में हैं राजकुमार पाल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद। फॉरवर्ड में हैं अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह, गुरजंत सिंह। और पेरिस ओलंपिक में भारत को मौजूदा चैंपियन बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। भारत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरूआत करेगा। मलय जी, अगर ये जो हम देखें, जो हमारी टीम बनी है, इसमें अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभाओं का एक बहुत ही आदर्श मिश्रण कह सकते हैं।
बिल्कुल अनोखा मिश्रण है। और आश्चर्य वाली बात सिर्फ एक है कि इसमें जुगराज सिंह को जगह नहीं दी गई है, उन्हें रिजर्व में रखा गया है वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि सेकंड ड्राफ्ट क्लिकर हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है वो तो है ही। सेकंड ड्राफ्ट क्लिकर की अगर बात करें तो वहां पर जुगराज की कमी खल सकती है, लेकिन अभी तो कुछ वक्त है। पहला मुकाबला से एक महीने बाद, एक महीने एक दिन बाद 27 तारीख को न्यूजीलैंड से होना है, तो देखते हैं क्या होता है तब तक। लेकिन फिलहाल जो क्रेग फुल्टन भारत के कोच हैं, उन्होंने जो बात कही है कि भारत में अनुभवी खिलाड़ियों की और बहुत ही होनहार खिलाड़ियों की इतनी लंबी कतार है कि उसमें से अगर आप जब चुनने बैठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है कि किसको लें किसको छोड़ें, क्योंकि सभी खिलाड़ी एक पर एक हैं। तो सितारों की इस दुनिया में से अगर कोई सितारे चमकदार चुनने हों तो कब कौन चमक जाए और टॉप किसकी चमक दिखाई न पड़े, बड़ी चकाचौंध करने वाली बात होती है। और ऐसे में मेरे ख्याल से जो उन्होंने टीम चुनी है बहुत अच्छी टीम है। देखिए हरमनप्रीत हैं एक ड्रैग फ्लिकर, हार्दिक हैं वो एक मिडफील्डर बहुत अच्छे हैं, और उधर से अगर आप देखें श्रीजेश, उनके रहने से एक नया जोश आता है, एक नई जान आ जाती है। और इस तरह से कृष्ण बहादुर पाठक रहेंगे वहां पे, और मैं आशा करता हूं कि श्रीजेश को कोई चोट वोट न लगे क्योंकि उनके रहने से बहुत रहता है। और मनप्रीत जैसे खिलाड़ी जिनके पास अनुभवों का इतना बड़ा भंडार है कि जो हमेशा जो नई पीढ़ी है, युवा खिलाड़ी हैं, उनको हमेशा प्रेरित करने के लिए वहां पर मैदान पर रहते हैं। तो और आपने खुद ही कहा, जिस तरह से आपने बात की टीम जब आप बता रही थी कि 5 डेब्यूटेंट्स, 5 नए खिलाड़ी, नए चेहरे इस टीम में शामिल किए गए हैं, और वो सब के सब इतने होनहार हैं, इतना अच्छा उन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया है, चाहे वो जर्मनप्रीत हो, संजय हो, राजकुमार पाल हो, अभिषेक हो, सुखजीत हो, कोई भी हो, इन लोगों ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया है और इसलिए उनको टीम में जगह, उन्होंने अपनी मेहनत से टीम में जगह बनाई है।
अगर देखा जाए, अगर हम अपनी भारतीय टीम का ओलंपिक इतिहास देखें तो उसमें हमने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है, अपने तीसरा ओलंपिक खेल रहे हैं। 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को उन्होंने कांस्य पदक भी दिलाया था। तो अब क्या लगते हैं, क्या लगता है कि हमने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था टोक्यो में, इस बार क्या उम्मीदें रख रहे हैं?
देखिए, भारतीय टीम हॉकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। जो एक बात हम पहले देखते थे कि ये कहा जाता था कि भारतीय हॉकी का खेल जो है वो हाथ से फिसल गए अवसरों के खेल के रूप में देखा जाता है, और अंतिम क्षणों में गोल खा जाने की जो एक आदत सी पड़ गई थी उससे छुटकारा मिला है भारतीय टीम को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 80 के ओलंपिक, मॉस्को ओलंपिक के बाद जिस तरह से टोक्यो में भारतीय टीम खेली, हालांकि कांस्य पदक मिला, लेकिन जो धुकधुकाती सांस थी उसको जैसे ऑक्सीजन ही नहीं वेंटिलेटर मिल गया हो, तो वो जो बात अब देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये नई उम्मीद के साथ भारतीय टीम पेरिस जाएगी और पेरिस में एक बार फिर वही इतिहास दोहराने का मौका मिलेगा भारतीय टीम को, जब 8-8, 6-6, 7-7 स्वर्ण पदक लगातार जीतते थे
और पिछले साल हमने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण जीते, तो इससे मनोबल और मजबूत हुआ है। अब बात क्रिकेट के मैदान की। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच त्रिनिदाद में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल रात 8 बजे गयाना में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। विश्व कप फाइनल शनिवार को बारबाडोस में होगा। कल के पहले सेमीफाइनल की बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर बांग्लादेश को हराते हुए अफगानिस्तान की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, और न सिर्फ सेमीफाइनल में बल्कि सुपर 8 में भी पहली बार पहुंची थी। तो कितने उलटफेर करके पहुंची है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता।
हल्के में मैं तो कहता हूं कि यह विश्व कप की बड़ी दावेदार के रूप में सामने उभर कर आई है। और आपने सुना कि साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही खतरनाक टीम है, और दक्षिण अफ्रीका की टीम में एक नया परिवर्तन जरूर देखने को मिला है। वो ये है कि जिसको चोकर्स की संख्या दी गई थी वो अब उन्होंने दूसरी टीमों को चोक कराया है। 1 रन से नेपाल को हराया, 3-4 रनों से बबांग्लादेश को हराया, 3 विकेट से वेस्ट इंडीज को जीते मरते हराया, तो चोकर्स का टैग खत्म हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो ये मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम बड़े बिंदास खेलती है, उसको जो कहते हैं नथिंग टू लूज, ठीक है जो करेंगे अच्छा करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंच गए यही बहुत बड़ी बात है। और अब तो उनके देश के शासक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। लेकिन अगर हम आप बात करें, देखिए अगर फॉर्म की बात करें आप, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कहते हैं क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, फॉर्म अस्थाई है, क्लास परमानेंट होता है। लेकिन अगर देखें आप, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया ग्रुप गेम में, ऑस्ट्रेलिया को हराया सुपर 8 में, दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसी टीम है जो भारत के अलावा जो अपराजित रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में, और फिर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम राशिद 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 करते रहे, उनके खिलाड़ियों में जैसे फजल हक फारूकी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, उसी प्रकार से अगर आप कीपर बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें, गुरबाज अपने दम पर मैच जिताने का वो रखते हैं, मादा रखते हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत ही कड़ा संघर्ष होगा, और मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक हो या हेनरी क्लासन हो या कोई भी हो, मतलब रबाडा हो, सबके दिमाग में ये चल रहा होगा इस वक्त कि ये कहां से एक आ गया नया जो प्रतिद्वंद्वी, जिसके पूरे आव भाव से भी हम परिचित नहीं
है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसके साथ जनरली नॉकआउट सेमीफाइनल में ही टैग लगा होता है कि वो फाइनल तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। चौकस किस्मत है, शायद कभी मैच ड्रॉ हो जाता है या हार जाती है, तो इस तरह का सिलसिला
होता है। देखिए प्रियंका, एक आंकड़ा, 7 बार छोटे फॉर्मेट में वो पहुंची है सेमीफाइनल में, 1 बार भी फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं टूटने के लिए बनते हैं प्रियंका जी, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स, वरना तो वेस्ट इंडीज कभी हारती ही नहीं, हमेशा जीतती जाती।
और अगर दूसरे मैच की बात करें तो भारत और इंग्लैंड का, जिसको आज सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जैसे गयाना में तेज वर्षा हो रही है, 1 दिन बाकी है, सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे भी नहीं है, तो मैच किसके पक्ष में हो सकता है, इससे भी संदेह लगा हुआ है।
देखिए एक्स्ट्रा डे नहीं है क्योंकि एक ही दिन के बाद फाइनल है
जी।
लेकिन 250 मिनट का अतिरिक्त खेल खेला जा सकता है और ये हमारे यहाँ भले ही शाम हो जाएगी, उनके यहाँ उस समय सुबह या डे एंड नाइट मैच नहीं है, तो अगर इसको डे एंड नाइट में बदलना भी पड़ा और डकवर्थ लेविस साहब ने जो नियम बनाए हैं, हालांकि डकवर्थ साहब अभी थोड़े दिनों पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जो उनके नियम बने हुए हैं अगर वो लागू हुए तो फिर ये कहते हैं ना एनीबडीज गेम हो जाएगा। लेकिन भारत मेरे ख्याल से जो टीम में संतुलन है इस वक्त भारत का, मतलब एक जमाना था जब कहते थे कि अगर 2-3 खिलाड़ी शुरू के नहीं चले तो भारतीय टीम फिर कुछ कर ही नहीं सकती। अब ये जमाना है कि अगर एक नहीं चला दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चला चौथा चलेगा। आप सोचिए जिस टीम में विराट कोहली जैसा विराट चरित्र हो और वो ना कुछ कर पाए और फिर भी आप कर लें, तो इस तरह से तो बहुत। और बोलर्स पर भी अगर आप,
मैं वही कह रही, जैसे विराट इस T20 में चले ही नहीं,
चले
है।
ही नहीं।
तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस परिपक्वता के साथ मैच इंडिया जीती है, चाहे वो बैटिंग हो, बोलिंग हो, या तो कि फील्डिंग हो, कैचेस जिस आपके पकड़े गए हैं,
और
तो
एक और
कमाल की बात है।
मैं जो छोटी सी एक बात मेरे ख्याल से जो मुझे बताना मैं अपने श्रोताओं को जरूरी समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से टीम बड़ी स्ट्रांग है। अब आप देखिए जब हार्दिक पांड्या की पिटाई हो रही थी उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या रोहित शर्मा जब आउट हो गए और उसके बाद फिर विकेट गिरने लगे और हमारे बॉलर जब बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे थे, तब ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैच हाथ से निकल जाए। लेकिन मैंने देखा नहीं किसी खिलाड़ी के चेहरे पर एक शिकन, चिंता की कोई एक लकीर, और कप्तान तो ऐसा लग रहा था जैसे जान रहे हो कि हम जीत रहे हैं। तो ये जो टीम का आत्मविश्वास है, वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव में टीम जब खेलती है तो जो जैसा खेलती है वो नजर आया ऑस्ट्रेलिया में, और जब बिल्कुल बिंदास खेलती है वो नजर आया भारत में। तो ये भारतीय टीम न सिर्फ संतुलित है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है, और इस बार विश्व कप मेरे हाथ, मुझे ऐसा लगता है कि इनके हाथों से फिसलना नहीं चाहिए।
बिल्कुल अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हैं, क्योंकि वन डे जब हुआ था तो ऐसा सिलसिला बहुत अच्छा चला था, लेकिन लास्ट में जाके हार गई थी। अब देखते हैं कि जो ये मेहनत, जो मनोबल टीम का इंडिया का है, उसी के बदौलत आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 44 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव भी 20 स्थान के फायदे से 11वें पायदान पर हैं। स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल 8वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड भारत के सूर्य कुमार यादव को पछाड़कर दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। बात यूरो कप के, यूरो फुटबॉल कप में आज डेनमार्क और सर्बिया के बीच गोल रहित मैच ड्रॉ रहा। उधर इंग्लैंड और स्लोवेनिया के बीच भी मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। डेनमार्क अंतिम 16 में पहुंच गई है, इंग्लैंड पहले ही इसमें जगह बना चुकी है। और कल ऑस्ट्रिया भी नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंच गई थी। आज दो और मैच खेले जाएंगे, स्लोवाकिया का सामना रोमानिया से और यूक्रेन का सामना बेल्जियम से होगा। ये ग्रुप ई के मैचेस हैं, और मतलब देखा जाए तो क्या बात है कि चारों टीमें ही 3-3 पॉइंट लेकर एक साथ ही बनी हुई है। किसकी बाजी लगती है 16 अंतिम 16 में जाने की, तो बाद में पता चलेगा।
जिसका तो बिल्कुल खोया हुआ है ये ग्रुप, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। यूक्रेन, बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया, पता नहीं क्या होगा, और इसमें कोई किसी से आगे निकल सकता है। तो जिस तरह से ये अभी तक का मैच हुआ है, अभी तक के मैचेस हुए हैं ग्रुप एफ में, तो कम से कम चलिए एक टीम ऊपर है कि जिसका पता है कि हाँ वो आ गई। लेकिन ई में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, और ये आज रात को जो अभी मुकाबले होंगे और फिर देर रात बाद मध्यरात्रि के बाद जो दो मुकाबले होंगे वो भी बड़े मायने रखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग कौन कौन यूरो 2024 के अंतिम 16 में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है।
और अब बात जाते जाते बैडमिंटन की। अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के कृष्ण प्रसाद गारगा और साई प्रतीक की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डी और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी को 21-14, 21-12 से हराया। पुरुष सिंगल्स में आज आयुष शेट्टी और महिला सिंगल्स में तान्या हेमंत अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में कल त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद तथा चीनी ताइपेई की पी सिंह और ई हंग की जोड़ी आमने सामने होंगी। समय कह रहा है अब श्रोताओं से अनुमति ली जाए। मलय जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
श्रोताओं, अब प्रियंका अरोरा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।